HD Smartcast.
You are listening to an HD Smartcast original.
मुझे काफ़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक रिक्वेस्ट आती हैं। और इस एपिसोड में मैं ऐसे ही एक टॉपिक को ले रहा हूँ। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी काफ़ी टाइम पहले, जहाँ पे एक लिसनर ने बोला कि मुझे टोकोनॉमिक्स के बारे में ज़्यादा जानना है। तो क्रिप्टो करेंट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे टोकोनॉमिक्स के ऊपर। टोकोनॉमिक्स क्या है, कैसे काम करता है, आप टोकोनॉमिक्स को कैसे समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ों को बेहतर समझेंगे। सबसे पहले टोकनॉमिक्स दो वर्ड्स से बनता है, टोकन एंड इकोनॉमिक्स। टोकन का मतलब क्या हुआ? टोकन का मतलब हुआ इन क्रिप्टोकरेंसी वर्ल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू, स्टेक, वोटिंग राइट और एनीथिंग इन एन इकोसिस्टम। यानी अगर आप किसी टोकन को होल्ड करते हैं तो एक तरीके से आप वहां पे वोट कर सकते हैं। अगर वहां पे डाओ है, आप उस टोकन को अगर होल्ड करते हैं तो आप उस क्रिप्टोकरेंसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर हैं, और आप उस टोकन को स्टेक भी कर सकते हैं अगर वो टोकन प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म पे काम करता है। टोकन्स नॉर्मली लोगों को प्री सेल में दिए जाते हैं, पब्लिक सेल में दिए जाते हैं, और उसके बाद लिक्विडिटी पूल में ऐड कर दिए जाते हैं, जहां से आप डायरेक्ट बाय एंड सेल भी कर सकते हैं। क्रिप्टोकरेंसी वर्ल्ड के अंदर हम नॉर्मली टोकन्स वर्ड को ज्यादा यूज करते हैं इन कंपैरिजन टू द कॉइंस दैट यू होल्ड। अब टोकन बनते हैं एग्जिस्टिंग ब्लॉकचेन्स के ऊपर, और काफी सारे क्रिप्टोकरेंसीज के अपने अपने ब्लॉकचेन्स हैं। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है जिससे ये प्रूव होता है कि आपको ड्राइविंग आती है या नहीं। हो सकता है आपको ना आती हो, आपने पैसे खिला के ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखा हो, बट सरकार ये मानती है कि क्योंकि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपको ड्राइविंग आती है। इसी तरीके से अगर आपके पास आधार कार्ड है, यानी आप एक इंडियन सिटीजन हैं, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप एक इंडियन सिटीजन हैं जो इस पासपोर्ट को लेकर बाकी कंट्रीज में भी ट्रैवल कर सकता है। आप इन सारी चीज़ों को एक टोकन के रूप में मान सकते हैं, यानी ड्राइविंग लाइसेंस एक टोकन है, आधार कार्ड एक टोकन है, पैन कार्ड एक टोकन है, पासपोर्ट एक टोकन है, वोटर आईडी कार्ड एक टोकन है, आपका कॉलेज का आईडी कार्ड या प्लेस ऑफ वर्क का कार्ड एक टोकन है। और हर टोकन के अपने अपने राइट्स हैं, अपनी अपनी ओनरशिप है, अपनी अपनी यूटिलिटी है। आप पासपोर्ट को लेकर शायद बैंक नहीं जा सकते कैश विड्रॉ करने के लिए, वहां पर आपको पैन कार्ड चाहिए। सिमिलरली आप पैन कार्ड नहीं दिखा सकते अगर आपको इंटरनेशनल कहीं जाना है, आपको वहां पासपोर्ट दिखाना होगा। तो इसी तरीके से टोकन्स की अलग अलग यूटिलिटी होती है और अलग अलग नीड होती है, और हर टोकन हर इंसान के लिए नहीं होता। अब समझते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिमांड एंड सप्लाई होती है। इसका मतलब हुआ इकोनॉमिक्स में दो चीज़ें हैं, पहला गुड्स एंड सर्विसेज एंड दूसरा डिमांड एंड सप्लाई। जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ये एक फीडबैक लूप की तरह काम करता है। तो शॉर्ट में अगर देखें, मार्केट प्राइसेस किसी भी मार्केट में, चाहे वो क्रिप्टो हो चाहे वो इक्विटी हो, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर चलते हैं, और ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए काम करता है। क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई है, इसी वजह से बाय एंड सेल होता है। अब अगर हम समझें कि क्या क्या चीज़ें सप्लाई और डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, तो हम अपनी इन्वेस्टिंग को और बेटर बना सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम सेम कॉन्सेप्ट टोकनॉमिक्स में अप्लाई करें, तो हम वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से टोकन्स हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं इन कंपेरिजन टू द टोकन्स जो शायद हमारे लिए उतने प्रॉफिटेबल ना रहें। तो टोकनॉमिक्स को समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल देता हूँ बिटकॉइन का। बिटकॉइन का सबसे यूनिक फैक्टर ये है कि ये लिमिटेड इन क्वांटिटी है। पूरे ड्यूरेशन में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस एग्जिस्ट करेंगे, जो 2141 तक लगभग माइन करे जाएंगे। तो क्योंकि बिटकॉइन लिमिटेड सप्लाई में है, ये काफ़ी वैल्यूएबल बनता है बिल्ट इन स्कार्सिटी की वजह से। और हर बिटकॉइन बहुत ही ज़्यादा डिविजिबल है, इसके बहुत छोटे छोटे पार्ट्स करे जा सकते हैं, तो इसको आप रेगुलर ट्रांजेक्शन्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बिटकॉइन लिमिटेड है और एक स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में देखा जाता है, तो काफ़ी लोग इसे डिजिटल गोल्ड भी बोलते हैं। और क्योंकि वो इस टोकन को डिजिटल गोल्ड मानते हैं, तो उनका बिहेवियर इसके लिए एज रेगुलर गोल्ड ही है। यानी वो इसे अक्यूमुलेट करना चाहते हैं और इसको एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं। सिमिलरली अगर हम इथीरियम को देखें, तो इथीरियम डैप्स क्रिएट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, NFTs क्रिएट करने के लिए, DeFi प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के लिए बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। और इथेरियम के टोकनॉमिक्स को अगर हम समझें तो हम देख सकते हैं कि करेंटली इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक पे जा रहा है और साथ के साथ वहां पे बर्निंग चलती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इथेरियम की टीम चाहती है कि नंबर ऑफ इथेरियम जो एग्जिस्ट करते हैं वो कम होते जाएं। मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी के लिए आप ऐसे सोचिए कि वर्ल्ड में 10 लाख डायमंड्स हैं जिसमें से करीब 1 लाख डायमंड्स टूट चुके या गुम हो चुके, तो ऑटोमेटिकली बचे हुए 9 लाख डायमंड बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होंगे। सेम चीज बिटकॉइन और इथेरियम के साथ है, क्योंकि काफी सारे बिटकॉइंस लॉस्ट हो चुके, गुम चुके या लोग अपने पासवर्ड्स भूल चुके। एंड सिमिलरली इथेरियम काफी ज्यादा बर्न करा जाता है, ये किसी भी इंसान के लिए बहुत ही वैल्यूएबल बन जाता है। तो अब बात करते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ये सारे के सारे फैक्टर्स को अफेक्ट कर सकती हैं। सबसे पहले होती है सप्लाई। जैसे मैंने आपको बोला बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 21 मिलियन है, यानी इसकी सप्लाई फिक्स्ड है। इथेरियम की करंट सप्लाई फिक्स्ड नहीं है। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि सप्लाई के अंदर तीन चीज़ें आती हैं। सर्क्यूलेटिंग सप्लाई, यानी उतने टोकन्स जो करंट सर्क्यूलेशन में हैं एंड आर इन दी हैंड ऑफ इन्वेस्टर्स। सेकेंड इज टोकन सप्लाई, यानी टोटल नंबर ऑफ टोकन्स दैट हैव बीन क्रिएटेड सो फार एक्सक्लूडिंग द बर्न्ड वंस। एंड थर्ड इज मैक्सिमम सप्लाई, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन्स जो कभी एग्जिस्टेंस में होंगे। फॉर एग्जाम्पल बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियन है, करंट सप्लाई शायद उसकी 18 या 19 मिलियन है, और इसमें से काफ़ी सारे बिटकॉइंस ऑलरेडी लॉस्ट हैं। सेकेंड फैक्टर ट्रेडिंग वॉल्यूम, हाउ इकोनॉमिकली एक्टिव द टोकन इज और कितना फ्रीक्वेंटली इसे बाय एंड सेल करा जाता है। जिस टोकन की ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छी है इसका मतलब है कि उसमें यूजर्स का काफ़ी इंटरेस्ट है और काफ़ी इन्वेस्टर्स इसको बाय एंड सेल कर रहे हैं, और शायद इस वजह से ये टोकन ज़्यादा वैल्यूएबल बन रहा है, क्योंकि नॉर्मली ट्रेडर्स उन टोकन्स को प्रेफर करते हैं जिनके पास बिल्ट इन वॉल्यूम होती है। तो ये भी एक सेल्फ एनफोर्सिंग पॉजिटिव फीडबैक लूप की तरह है, जहाँ वॉल्यूम देखकर और लोग आते हैं, और लोग आते हैं तो वॉल्यूम बढ़ती है, वो बढ़ते वॉल्यूम को देख के और नए लोग आते हैं। नंबर 3 इज मार्केट कैप या वैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जो आप बेसिकली सर्क्यूलेटिंग सप्लाई इनटू प्राइस ऑफ टोकन से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आज 1 लाख इथेरियम सर्क्यूलेटिंग सप्लाई के अंदर हैं और हर इथेरियम का प्राइस $1 है, तो इथेरियम की मार्केट कैप $1,00,000 हो जाएगी, यानी $100,000। नंबर 4 टोकन डिस्ट्रीब्यूशन। टोकन डिस्ट्रीब्यूशन दो तरीकों से हो सकती है, या तो आप इसको किसी प्री सेल के थ्रू कर सकते हैं जहां पे मल्टीपल राउंड्स हो सकते हैं, या आप इसे फेयर लॉन्च के थ्रू कर सकते हैं, यानी आप चूज कर सकते हैं कि आपको यूजर्स को कैसे ऑनबोर्ड करना है। तीसरा ऑप्शन ये भी है कि आप इसको माइन कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है बिटकॉइन, जो अभी भी जीपीयूज के थ्रू माइन किया जाता है। अगर आप प्री सेल करते हैं या फेयर लॉन्च करते हैं, वहां पर आप एलोकेशन भी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं प्री सेल में अगर आप 5% टोकन्स को रिलीज करना चाहते हैं, फेयर लॉन्च में आप इनिशियली कितने परसेंट टोकन्स को निकालना चाहते हैं, ये सारी चीज़ों को आप सेट कर सकते हैं। अगर टोकन्स को माइन करा जा रहा है तो इनिशियल लेवल पे पूरी की पूरी एलोकेशन सेट की जा सकती है, एंड ये नॉर्मली रिवर्सिबल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ बिटकॉइन बढ़ नहीं सकते और कम नहीं हो सकते, जो टोटल माइन होंगे वो 21 मिलियन ही होंगे। सिक्स्थ पॉइंट इज क्या टोकन इन्फ्लेशनरी है या डिफ्लेशनरी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो इन्फ्लेशनरी है तो इस टोकन की सर्क्यूलेटिंग सप्लाई बढ़ती रहेगी और इस वजह से इसका प्राइस हो सकता है कम ज़्यादा होता रहे, और अगर वो डिफ्लेशनरी है तो इसका मतलब हुआ कि इस टोकन की सर्क्यूलेटिंग सप्लाई कम होती रहेगी और हो सकता है कि इस वजह से प्राइस बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वर्ल्ड में जितनी भी फियाट करेंसीज हैं वो इन्फ्लेशनरी इन नेचर होती हैं, यानी न्यू मनी इज प्रिंटेड और इस तरीके से उनकी सर्क्यूलेटिंग सप्लाई बढ़ती है। क्योंकि सर्क्यूलेटिंग सप्लाई बढ़ती है इस वजह से इन्फ्लेशन आती है, और इन्फ्लेशन के आने की वजह से हर करेंसी की बाइंग पावर कम हो जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए 10 साल पहले आप 100 रुपये में 10 समोसे खरीद सकते थे, तो शायद आज आप 100 रुपये में 5 ही समोसे खरीद पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि समोसे का प्राइस भी बढ़ गया और आपकी बाइंग पावर भी रिड्यूस हो चुकी। सिमिलरली इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी टोकन्स काम करते हैं। आखिरी पॉइंट यूसेज, टोकन का यूज़ क्या है। जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि बिटकॉइन को लोग स्टोर ऑफ वैल्यू की तरीके से देखते हैं, इथेरियम को लोग एक प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग अदर क्रिप्टोकरेंसी प्रोडक्ट्स के रूप में देखते हैं, तो हर टोकन का एक अपना यूटिलिटी होता है। अगर हम BNB टोकन को देखते हैं या कुकॉइन टोकन को देखते हैं, तो ये टोकन रिप्रेजेंट करते हैं उन एक्सचेंजेस को। अगर हम पैनकेक स्वैप, यूनी स्वैप, सुशी स्वैप जैसे टोकन्स को देखते हैं, तो ये टोकन रिप्रेजेंट करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। आवे एंड कर्व रिप्रेजेंट करते हैं लैंडिंग एंड बोरिंग प्लेटफॉर्म्स, तो इसकी भी यूटिलिटी डिफरेंट हो गई। अब आप सोचेंगे कि यार इतने सारे फैक्टर्स को मैं कैसे स्टडी कर सकता हूँ, मैं कैसे बेहतर समझ सकता हूँ, और वो भी इतने अलग अलग टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसीज के लिए। तो इसके लिए मैं आपको कुछ रिसोर्सेस बता रहा हूँ। सबसे पहले आप जा सकते हैं कॉइन मार्केट कैप पे, वहां पे हर टोकन की काइंड ऑफ एक मिनी विकिपीडिया बनी हुई है, जहां पर आप सारे के सारे ये इन्फॉर्मेशन को रिव्यू कर सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स होते हैं। तो वहां उन लिंक्स में आपको जाके इन टोकन्स का वाइट पेपर पढ़ना है और उसमें स्पेसिफिकली टोकनॉमिक्स को समझना है। कॉइन गेको इज अनदर रिसोर्स दैट यू कैन यूज, ये भी कॉइन मार्केट कैप की तरह ही है। इसमें काफी इन्फॉर्मेशन हर टोकन के बारे में अवेलेबल है विद ऑल दी इम्पॉर्टेंट लिंक्स। ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर इज अनदर रिसोर्स दैट यू कैन यूज, और ये सारी चीजों को यूज करते करते आप अलग अलग टोकन्स को रिव्यू कर सकते हैं एंड कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अभी तक टोकनॉमिक्स के बारे में मैंने आपसे जितनी चीजें शेयर करी, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इसको बेटर समझ पाएंगे और अब आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स को रिव्यू कर पाएंगे। जस्ट टू गिव यू अ क्विक रीकैप ऑफ द 7 पॉइंट्स जो मैंने टोकनॉमिक्स के अंदर बोले, सबसे पहले मैंने बात करी थी सप्लाई की, देन ट्रेडिंग वॉल्यूम की, देन मार्केट कैप की, देन टोकन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एलोकेशन, नेक्स्ट वॉज इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी टोकन, एंड फाइनली यूजेज की। ये 7 फैक्टर्स को आप रिव्यू करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टर्स हैं, एंड इंश्योर करिए कि भटकने मत दें आप अपने दोस्त को।
दिस वॉज एन HT Smartcast ओरिजिनल। HT Smartcast।